ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी नमं ब्राह्मणे देवाय गोब्राह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भागवतम स्कंद 4 अध्याय 27 श्लोक नंबर 13 चांडवेग इति ख्यातो गंधर्व अधिपति नृप गंधर्व स्तस्य बलिनः षष्टच्युत शत त्रयम्। चंडवेग इति ख्यातो गंधर्व अधिपति नृप गंधर्व तस्य बलिनः षष्टे उतर शतत्रयम्। चंडवेग इति ख्यातो गंधर्वाति अधिपति नृप गंधर्वास्तस्य बलिनः षष्टचिष्टा शतत्रयम्। चंडवेग इति ख्यातो गंधर्वाधिपति नृप गंधर्वास्तस्य बलिनः षष्टचिष्टा शतत्रयम्। शब्द अनुवाद और अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की शब्द अनुवाद। चंडवेग चंडवेग इति इस प्रकार ख्यात विख्यात गंधर्व गंधर्व लोक का वासी अधिपति हे राजा नृप हे राजा गंधर्व अन्य गंधर्व तस्य उसके बलिनः अत्यंत बलशाली सैनिक षष्टि साठ उतरा अधिक शत सौ त्रयम् तीन। अनुवाद। हे राजन गंधर्व लोक में चंडवेग नाम का एक राजा है उसके अधीन 360 अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व सैनिक है। तात्पर्य यहाँ पर अलंकारिक ढंग से काल का वर्णन चंडवेग के रूप में हुआ है। काल को चंडवेग कहा गया है जिसका अर्थ होता है अत्यंत तेजी से गुजरने वाला। ज्यों ज्यों काल बीतता है इसकी गणना वर्षों के रूप में की जाती है। एक वर्ष में 360 दिन होते हैं और चांडव्य के सैनिकों की भी संख्या इस श्लोक में इतनी ही बताई गई है। समय तेजी से बीतता है और चांडव्य के सैनिक हमारे जीवन दिनों को तेजी से लेते जाते हैं। जो ही सूरज उदय तथा अस्त होता है, हमसे हमारी जीवन अवधि कम होती जाती है। इस प्रकार एक दिन बीतने के साथ हमारे जीवन का एक दिन चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन की अवधि को बचाया नहीं जा सकता है, किंतु यदि मनुष्य भक्ति में लग जाता है तो सूर्य उससे समय को छीन नहीं सकता। जैसे कि श्रीमद् भागवत में द्वितीय अध्याय द्वितीय स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 17 में कहा गया है, आयु हरति वै पुंसा मुद्य नस्त्य च यनशौ। तात्पर्य यह है कि यदि कोई अमर होना चाहता है तो उसे इंद्र तृप्ति को त्याग देना चाहिए। भक्ति में लगने से मनुष्य क्रमशः भगवान के शाश्वत राज्य में प्रवेश कर सकता है। कभी कभी मृगतुष्णा तथा अन्य भ्रमपूर्ण वस्तुओं को गंधर्व कहा जाता है। हमारे जीवन अवधि की खेती को हमारी बढ़ती आयु कहा जाता है। इस प्रकार जीवन के दिनों का व्यतीत होना अलंकारिक ढंग से गंधर्व के रूप में वर्णित है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। ये गंधर्व स्त्री तथा पुरुष दोनों होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अदृश्य रूप से कालवश अपनी आयु खोते हैं, जैसे यहाँ पर चंडवेक के रूप में वर्णित किया गया है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरन मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरुचित पदकमलम श्री गुरुन वैष्णवांश श्री रूपम साग्रजतम सहगण रघुनाथानीतम तम सजीवम साद्वैतम सवधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्री विशाखानीतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन सत्संग पर आप सबको कृष्ण बलराम का मंदिर का ओर से हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। ये भी भाग्य की बात है जो कि वृंदावन धाम में बैठ के भागवत सुनना ये सबका बस में नहीं है, भागवत सुनना। क्योंकि बहुत सारा जिस प्रकार बाहर से लोग आते हैं वृंदावन, वृंदावन में शास्त्र कहता है वृंदावन में बैठना है भगवान का गोद में बैठना सदृश है। और ब्रज रज को मथा पे लगाना मतलब ब्रज रज को मथा पे लगाना मतलब कृष्ण का चरणों का रज को मथा पे लगाना सदृश है। बहुत सारे लोग ब्रज में आते हैं वृंदावन घूमने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं घूमना है वृंदावन, जानकारी नहीं है, फिर भी बहुत बार उनको शिक्षा दिया जाता है। लेकिन सबका कर्तव्य है उनको किस प्रकार के वृंदावन धाम का बारे में बताएं। जब भी सुबह भक्त लोग आते हैं, बहुत सारा सुबह सुबह भक्त लोग बहुत आते हैं मंगला आरती पे, तब मंगला आरती के बाद सबको हमारा सबका कर्तव्य है सबको एक ही साथ में बैठाना चाहिए और उनको माला दिया जाता है, तब भगवान का नाम का शिक्षा दिया जाता है नाम के सब प्रकार करने के लिए। ये सबका कर्तव्य है, सब लोग को इसमें सहयोग होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। वृंदावन धाम में जब हम रह रहे हैं, ये हमारा प्रचार का केंद्र है और प्रचार सोसाइटी है, और प्रभुपद का यही उद्देश्य था, और उनका भाग्य भी खोल जाएगा, कम से कम भगवान का भक्ति में लग जाएगा। ये सबका एक आपको सिर्फ नर्मा लेके ये बता रहा हूँ। कल इतने भक्त थे कि जो कि बाहर का कल्पना कभी भी इसी प्रकार नहीं हुआ था। ये मंदिर जब से है तब से इतने भगवद्गीता डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था बोल रहे है। कल सुबह सुबह लगभग 80 भगवद्गीता गया, और ये बलराम हॉल का पूरा आधा भर गए थे। लगभग 100-150 बाहर का लोग थे, सब लोग नया थे, और सब लोग उत्साह के साथ भगवद्गीता लिए। प्रभुपाद का जो भगवद्गीता है एक आटम बम है, और वो लोग को इसी प्रकार बताया गया, भगवद्गीता आप लेकर रखो, एक दिन पढ़ोगे, और नहीं पढ़ोगे कम से कम कोई नहीं पढ़ेगा, कोई ना कोई पढ़ेगा, और नहीं आपके पास है तो इसको लेकर दान करो। शास्त्र में प्रमाण दिया गया, एक व्यक्ति भगवद्गीता लेकर किसी को भी दान देता है, बाई चांस आप किसको दान देते हो, भगवान का रजिस्टर में भगवान का खाता कलम इतना भर जाता है इसका पुण्य फल लिखने के लिए। एक भगवद्गीता का दान करने का पुण्य कितना है जो कि उनका कागज कलम भर जाता है भगवद्गीता दान देने से। इसीलिए सभी का कर्तव्य है कि ऐसी प्रकार भगवद्गीता हर व्यक्ति के पास से पहुंच जाए और भगवद्गीता को बांटे। तो आज का जो कथा है ये बहुत आश्चर्य की घटना और सबके लिए। आप लोग बहुत दिन से सुनकर आ रहा है पुरंजन का कथा। ये कि पुरंजन जो कथा है, ये पुरंजन को रूपक बना के प्रभुपद ने भागवत में मेंशन किया है, और ये चार अध्याय है, ये चतुर्थ स्कंद में ये चार अध्याय पुरंजन का बारे में आएगा। अभी तीसरा अध्याय चल रहा है और एक चैप्टर है पुरंजन का संपूर्ण व्याख्या। लेकिन आज का जो श्लोक है, आज का श्लोक में प्रभुपाद जी ज्यादा से ज्यादा कहते हैं काल का ऊपर, और संसार में हर व्यक्ति को काल ग्रास करता है, लेकिन भक्त को कभी काल ग्रास नहीं कर सकता है। क्लियर कर दिए, जो भक्ति करता है उसको काल कभी ग्रास नहीं करेगा। लेकिन हमें सांसारिक जीवन में देखते तो हमें बोलते हैं ये मर गया, वो मर गया, ये हो गया, वो हो गया। ये शरीर तो भगवान भगवद्गीता में कह दिए, ये शरीर क्या है, एक ही कपड़ा सदृश है, आज ये अभी ढका है, नया कपड़ा लिया है, इसी प्रकार है ये शरीर एक ही कपड़ा सदृश है। बांसा से जिनाने जथा ब्याह नवानी गृहणाति नरो अपराणी तथा शरीराने ब्याह जिन्नानी अन्यानी संजाति नवानी देही। इसलिए ये शरीर के साथ हमें संबंध रखेंगे तब हमें दुखी रहेंगे। शरीर का सत्य संबंध नहीं, आत्मा का सत्य संबंध रखना, और करना है तो आत्मा के लिए करना है। इसलिए कहते हैं हर व्यक्ति को ये काल ग्रास करेगा। इसलिए प्रभुपाद ने यहां पे मेंशन करते हैं चंड बैग को दूसरा नाम में कहते हैं काल। और काल किस प्रकार बीतता है और सबके लिए काल कैसा बीतता है यहां पे देते हैं प्रभुपाद। कहते हैं 360 दिन होता है, एक साल कितना दिन होता है 360 दिन। और दूसरा अर्थ में कहते हैं, हम लोग को कहते तो साल का कितना दिन 365 दिन गिनती करते हैं, लेकिन हिसाब से देखा जाए हर जगह पे हिसाब किताब किया जाता है, पर मंथ 30 दिन का हिसाब किया जाता है। कोई भी गवर्नमेंट हिसाब देखा जाए कितना दिन हिसाब लेते हैं 30 दिन का। 30 दिन हिसाब करेंगे तो 12 महीना एक महीना में 30 दिन, 12 महीना में कितना दिन हो गया 360 दिन। इस प्रकार ये 360 दिन प्रभुपाद ने यहाँ पे भागवत में प्रमाण करके कहे 360 दिन मतलब है 360 दिन का 360 सैनिक है। 360 दिन मतलब 360 सैनिक थे ये पुरंजन का, 360 सैनिक थे। और ये क्या करते थे, हाँ ये इसको कहते हैं दिन है, और अगली श्लोक में आएगा काल का जो श्लोक जो चर्चा करेंगे उसमें आएगा। और 360 दिन रात होता है, 360 दिन और 360 क्या है रात है, 720 मिल जाता है, मिल जाता है तो 720 सैनिक मिल हो जाते हैं, 720 गंधर्व होते हैं, इसको कहते हैं यहाँ पे चंडबे को यहाँ काल कहा गया। दिन रात होते हैं, सबका आयु को घटती जाती है, लेकिन भागवत में क्या कह गया, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे भागवत में सेकंड चैप्टर का श्लोक मेंशन करते हैं, आयु हरति वैपुंसा मुद्य न्यस्त च यनसौ तस्यते जत क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्ताया। सूर्य उदय तथा अस्त होते ही सूर्य सबकी आयु को क्षण करता है, किंतु यहाँ पे किंतु बताया गया, लेकिन भी बता सकते हैं, जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय को सदुपयोग करता है उनके आयु क्षीण नहीं होता है। पूरा क्लियर? इसलिए कहते हैं भक्त का आयु क्षीण नहीं होता है। जो भगवान का बारे में नहीं सुनेगा, जो भगवान का बारे में आलोचना नहीं करेगा, भगवान का बारे में बोलेगा नहीं, भगवान का नाम नहीं जप करेगा, भगवान को स्मरण नहीं करेगा, इसका आयु क्षीण जाएगा। और जो भगवान का बारे में चर्चा करता है इसका आयु क्षीण नहीं होता है। सीधा बात, जब कभी भी सुबह सुबह जब लेक्चर देता हूँ माला करने के टाइम पे, थोड़ा लोग को डराने के लिए बताता हूँ, थोड़ा बाहर का लोग आते हैं तब उनको थोड़ा डरा देता हूँ। किस प्रकार कह के मैं बोलता हूँ, आप लोग वृंदावन धाम आए हो, धाम में करना क्या चाहिए? धाम में सिंपल है प्रभु का नाम, और धाम में आकर और कुछ उल्टा सीधा काम करते हो तब भी उल्टा सीधा का रिजल्ट मिलेगा। इसलिए धाम में आकर करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रभु का नाम। धाम में सिंपल है प्रभु का नाम, और कुछ नहीं करने का। सांसारिक जीवन, सांसारिक बात कुछ नहीं करने का, सिंपल है प्रभु का नाम। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप आए हैं कृष्ण का नगरी पे, कृष्ण का साथ मिलने के लिए। कृष्ण का साथ मिलने के लिए मतलब कृष्ण का बारे में चर्चा करना है। बाईचांस एग्जाम्पल देते हैं, आप कभी किसी का घर जाते हैं, बाईचांस आप आपका मित्र का घर पे जाते हैं, घर पे जाकर क्या बोलते हैं? मित्र का घर पे जाते हो तो पहले पूछते हैं, कैसे है वो मित्र? पहले पूछते हैं कि नहीं बताए, हाउ आर यू? पहले पूछते हैं। उसी प्रकार आप भगवान का नगरी पे आए हो, भगवान का नगरी पे आकर क्या करना चाहिए? भगवान से पूछना चाहिए, भगवान का वार्तालाप करना चाहिए। इसलिए कहते हैं भगवान भगवद गीता में कहते हैं, भक्त लोग बैठ के क्या चर्चा करते हैं? मज्जिता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च, इसमें रमण जाते हैं। और मज्जिता मद्गता प्राणा, और उसी में ही मन लगा रखते हैं, प्रत्येक समय प्रति क्षण में प्रति सेकेंड में उसी को ही चर्चा करते हैं प्रभु का बारे में, तब इनका आयु क्षीण नहीं होता है। और बाई चांस आप भगवान का बारे में चर्चा नहीं करके विषय का बारे में चर्चा किया, आयु क्षीण हो जाएगा। बहुत सारा लोग आते हैं आके वृंदावन धाम में, दो चार फोटो ले लेते हैं, दो चार फोटो इधर इधर का फोटो, बाई चांस इधर उधर का फोटो ले लें, क्या धाम यात्रा का सफल मिल जाएगा? फोटो लेने से धाम यात्रा सफल हो जाएगा? फिर फोटो किसका लेना चाहिए? कम से कम भगवान का तो फोटो ले, वो भी नहीं लेते हैं, खुद का फोटो, खुद का स्टाइल मार के फोटो दिखाते रहते। और ये फोटो क्यों ले रहा है? आपका रियल फोटो भगवान के पास है, आपका फोटो नहीं होता था, आपका नेचुरल रियल फोटो नहीं होता था, आपका स्ट्रक्चर नहीं बनता था। कैसा? कैसा कि क्योंकि आप जीवात्मा हो, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अंश होने का नाते आपका स्ट्रक्चर ऑलरेडी उनके पास है, इसलिए तो आपका स्ट्रक्चर बना। और आप इस शरीर में जड़ो शरीर को सुबह से शाम तक देख के चेहरा बना रहे और फोटो लेते जा रहे, वृंदावन धाम आए हो। इसी में क्या होता है? आयु हरण हो जाता है। और इसलिए दिन मिलता है तो दिन में क्या करना चाहिए और रात में क्या होना चाहिए ये मालूम होना चाहिए। लेकिन दिन में क्या करते हैं संसारिक लोग? संसार करते करते थक जाते हैं। दिन भर तक विषय भोग को किसी प्रकार इकट्ठा करना, सारा संसार का लोग सुख को ढूंढ रहा है लेकिन सुख है नहीं। प्रत्येक व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है, कहां मिलेगा सुख? सुबह से शाम तक क्या कर रहा है? सुख ढूंढ रहा है, कहां मिलेगा? सुख है नहीं। और सुख तो एक ही जगह पे है, एक वो जगह कौन सा जगह है? कृष्ण का चरण कमल पर। और कृष्ण का चरण को पकड़ने के लिए उपाय क्या है? सिंपल है प्रभु का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार भगवान नारायण चार भुज में सारा संसार का लोग को बांट रहे थे। नारायण चतुर्भुज होकर सबको, जो व्यक्ति जो कुछ मांगा सबको बांट रहे थे। और नारायण का चरण कमल पर लक्ष्मी जी बैठे, लक्ष्मी जी बैठ के देख रहा है, अरे लोग सब कुछ ले रहे हैं, जा रहे हैं, सब लोग लेकर जा रहे हैं। और नारायण ने एक ही चीज ही पैर का नीचे छुपा कर रख दिया,
पैर का नीचे छुपा कर रख दिया, और छुपा करके नारायण हंस रहा है, थोड़ा मुस्कुरा है, और लक्ष्मी जी भी उनका मुस्कुराते हुए मुखमंडल को देखते हुए लक्ष्मी जी भी हंसने लगे। बोले ये क्या प्रभु का लीला, प्रभु तो सब कुछ सब लोग को सब कुछ दे रहे थे और क्या पैर का नीचे छुपा करके हंस रहे। तब लक्ष्मी जी पूछने लगा, हाथ जोड़ के पूछा, पूछा प्रभु आप पैर का नीचे क्या छुपाया। बोला सारा संसार का लोग कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और मैं दानवीर हरिश्चंद्र हूं, मैं सब कुछ देता हूं, मेरा नाम है दानी, मैं सब कुछ देता हूं, जो व्यक्ति जो कुछ मांगेगा मैं उसको वही चीज भी दे देता हूं, मैं कभी कंजूस नहीं हूं। सारा संसार का लोग कंजूस हो सकते हैं लेकिन मैं कभी कंजूस नहीं हूं, मेरा चतुर्भुज में दान देता हूं, चार भुज में सब कुछ देता हूं, सारा संसार का लोग मांगते तो मैं देता रहता हूं, दे रहा हूं। और सारा संसार का लोग आते हैं तो क्या मांगते हैं, क्या मांगते हैं, विषय सुख, क्या मांगते हैं, विषय सुख, कैसा शरीर को तंदुरुस्त करना है, कैसा घर बनाना है, कैसा अच्छा पत्नी मिलाना है, कैसा अच्छे पति मिले, कभी नौकरी मिल जाए, कभी अच्छा गाड़ी मिल जाए, इसी के लिए तो मांगता है, और कुछ मांगता है, फूल चढ़ाएगा पहले, हाँ पहले चढ़ाने का पहले पहले लिस्ट बनाकर प्रभु को मांगेगा। और मांगते मांगते खुद भी थक भी जाता है, मांगते मांगते और प्रभु दे रहा है। तब सारा संसार का लोग को दे रहे थे लेकिन एक चीज पैर का नीचे छुपा कर रखा है, और प्रभु स्वयं बोले, बोले वो चीज को कोई नहीं मांगता है, मांगता है कोई, प्रभु मेरा को सुख चाहिए, शांति चाहिए, कोई मांगता है, कोई नहीं, विषय भोग मांगते रहते हैं। इसलिए भगवान चरण कमल पे, चरण का नीचे क्या छुपा कर रखा, क्या छुपा कर रखा, शांति को छुपा कर रखा, किसी को नहीं देते, और वही व्यक्ति को देते हैं जो व्यक्ति उनका शरण पे आता है, उनका चरण कमल को पकड़ता है, और जो व्यक्ति प्रभु का नाम लेता है वही व्यक्ति को वो चीज दे देते हैं, ले लो। इसलिए कहते संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो विषय भोग को मांगता है, विषय चीज में रचने का नाते दुखी हो जाता है, इसलिए कहते हैं तन दुखे मन दुखे धन बिना रहते उदास, संसार में सब थोड़ी थोड़ी दुखी सुखी रहते श्याम का दास, प्रभु का दास बने, जब दासत्व को स्वीकार करता है और सुख ही सुख मिलता है, दुख आएगा नहीं। इसलिए यहां पे कह रहे हैं भगवान का चरण कमल को पकड़ने का उपाय है, और भक्त बनो और भक्ति करो, नहीं तो हमारा आयु क्षीण हो जाएगा, दिन और रात ये दोनों मिलके हमारा आयु को क्षीण करने में लगे हैं, और सारा संसार का लोग को मालूम नहीं पड़ता है, बोलते हैं चलता है हमारा ठीक। एक बार राधा गोविंद महाराज ने एक लेक्चर में बता रहे थे, कोई भी व्यक्ति को हमें कभी भी कुछ पूछते हैं बाय चांस आप कैसे हो, व्यक्ति क्या बोलता है, हाँ जी बोला ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, बोला ठीक है। महाराज एक बार लेक्चर में बोल रहे थे, बोले सब लोग ऐसा ही बोलते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने स्टूडियो में गया, स्टूडियो में जाके, स्टूडियो में क्या होता है, भोजन होता है क्या, स्टूडियो में क्या होता है, फोटो लेते हैं। तब व्यक्ति खड़ा हो गया, तब कैमरा मैन गया, कैमरा मैन जाके बोला 1 2 3, बोलने के बाद क्या बोला, लिटिल स्माइलिंग, थोड़ी से मुस्कुराइए, क्यों, क्यों मुस्कुराया हुआ चेहरा आ जाएगा, बारम्बार आप मुस्कुराया हुआ चेहरा देखते रहोगे, लेकिन जन्म से लेकर लास्ट तक तो दुखी है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, और जो भी कोई भी व्यक्ति पूछता है क्या बोलता है, ठीक ही हूं, ये है हमारा संसार का हाल हमेशा के लिए ये, और हर व्यक्ति ही इस प्रकार के, और ये जो चंड वेग है ये काल रूप में, ये काल है। और दूसरा अर्थ में कहते हैं एक ही भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अच्छा भजन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और दूसरा है हमारा आयु को बढ़ाने के लिए, आयु को बढ़ाने के लिए, आयु 5 चीज आयु को बढ़ाता है और 6 चीज आयु को घटाता है, आपको आएगा महाभारत में विदुर नीति में कहा जाता है, बात अभी आगे चर्चा में बताऊंगा, लेकिन ये भजन सुनिए किस प्रकार, और हर भक्त के लिए, और किस प्रकार ये भजन में हमें समझ सकते हैं। भूलिया तुम्हारे संसार आशिया पे नाना विध व्यथा, तुम्हारा चरणे आशी अच्छी आमी बलि व दुखेरे कथा। भूलिया तुम्हारे संसार आशिया, भगवान को संपूर्ण क्या हो चुके हैं, भूल चुके हैं। और कब भूले? आने का बाद, आने का बाद ये धरती को स्पर्श करते हुए तब जाकर भूले। गर्भ के अंदर कोई नहीं भूला, गर्भ के अंदर कोई नहीं भूलता है। और उसके अंदर रह के प्रति मुहूर्त में, प्रति क्षण में, प्रति सेकंड में प्रभु को चिंतन करता है। इतने यंत्रणा मिलता है इसका। सबके लिए ऐसा ही हुआ था। कैसा बच्चा जब रहता है गर्भ का अंदर, कैसा रहता है? सीधा रहता है? कैसा रहता है? उल्टा रहता है, सिर नीचे और पैर ऊपर। तब और कितना दिन रहता है? कितना दिन? 9 महीना। आप समझिए, अभी का टाइम पे कोई व्यक्ति को ऐसा लटका दिया जाए, पैर का ऊपर और नीचे सिर के क्या कर दिया जाएगा, तब कितना समय रह सकता है? 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा? 1 घंटा हो गया तो उसका हालत खराब। लेकिन बच्चा 9 महीना, और इसका अंदर कोई अच्छा चीज नहीं है। अच्छा चीज है? कोई अच्छा चीज नहीं है। और इतने कीटाणु उसको दंशन करते हैं और चिल्लाता है, प्रत्येक मुहूर्त में चिल्लाता है, प्रभु बचाओ। 9 महीना तक चिल्लाते 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 प्रभु को प्रार्थना करते हैं, प्रभु बचाओ। और क्या प्रार्थना करता है? प्रभु आप बचाओगे तो मैं आपका भजन करूंगा। ये संकल्प एक बार लिया, प्रभु आप मेरा को बचाओगे तो मैं आपका भजन करूंगा। तो बाहर निकलते हुए क्या हुआ यहाँ पे? भूलिया तुम्हारे संसार आशिया ना पे नाना विध व्यथा। और संसार में आते हुए धरती को स्पर्श करते हुए भगवान को वहां पे भूला। भजन करने के लिए भगवान को प्रार्थना किया, और भजन बाहर निकलते हुए भजन को छोड़ के भोजन में लग गया। ये संसार में, ये संसार का हाल। फिर दूसरा बात कहते हैं, तुम्हारा चरणे आशी अच्छी आमी बलि व दुखेरे कथा। तुम्हारा चरण है प्रभु, मैं आपका चरण को स्पर्श करना चाहता हूं। आशी अच्छी आमी बलि व और दुख का कथा मैं आपको कह रहा हूं। जननी जठरे छिलाम जखन विषम बंधन पासे, एक बार प्रभु देखा दिया मुरे बंचिले ए दिन उदासे। जब जननी का जठ में मतलब गर्भ का अंदर थिला, तब विषय बंधन का फास में था। इतने बंधन की चार तरफ बंधा गया था। इसका अंदर कोई एसी की, कोई गीजर किसी की पंखा कुछ नहीं लगा, चार तरफ बंधन है, चार तरफ बंधन है, बाहर नहीं निकल सकता है। एक बार प्रभु देखा दिया मुरे बंचिल ये दिन दास है। तखन भाविनु जन्म पाया करीब भजन तब, जन्म हईल पड़ी माया जले ना हईल ज्ञान लव। भजन करने के लिए मैं प्रार्थना किया था, और जन्म हईल पड़ी माया जाले, ये मोह माया का जाल में फंस गया, जाल में फंस गया। इसलिए कहते हैं एक बार राधानाथ महाराज बोल रहे थे, बोले थे, कहते हैं इंटरनेट, क्या है इंटरनेट? नेट मतलब क्या है? जाल। इंटर मतलब एंट्री करना है, इंटर मतलब एंट्री करना, और किसका अंदर? जाल का अंदर। सारा जगत कौन सा जाल में फंसे है? मोह माया का जाल। मोह माया का जाल का अंदर फंसे है, फिर इंटरनेट देखना चाहता है, फिर इंटरनेट का अंदर फंसना चाहता है। और जब एक ही बार इंटरनेट का अंदर फंस जाता है व्यक्ति, वहां से निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा इंटरनेट में चलता रहता है, फेसबुक में बैठ गया तो खाना पीना भी भूल जाता है। ये है मोह माया का जाल है। इसलिए यहां पे कह रहे हैं, जन्म हईल पड़ी माया जले ना हईल ज्ञान लव। आदर रे छेले सोजने रो कुले हसिया काटने काला। और जितना सब सोजन संबंधी, हाँ सारा पारिवारिक रिश्तेदार मिल गए संपूर्ण, उसमें समय को बिता दिए। जनक जनक जननी स्नेहते भूलिया संसार लागिल भल। और सारा संसार उसको अच्छा लग रहा है, वो सोच रहा है सारा संसार सबके लिए मेरा के लिए बहुत अच्छा है। कभी कभी यहाँ पे जवान लोग, स्टूडेंट लोग आते हैं। कल एक स्टूडेंट आए थे, कम से कम लगभग 10 स्टूडेंट एक ही साथ में। तब मैंने ये जो म्यूजियम है प्रभुपाद जी का, गुरु परंपरा है, वहाँ पे खड़ा होकर, वो पीछे गुरु परंपरा का पीछे एक ही रखा गया, क्या है बॉडी चेंज, वहाँ पे रखा गया ना, बचपन से लेके बुढ़ापा किस प्रकार, हाँ शरीर का जो स्ट्रक्चर है उसका रखा गया। तो वो वहां पे खड़ा होके मैं किताब दे रहा था और वो स्टूडेंट लोग को दिया जब किताब, पहले तो पकड़े नहीं, पहले पकड़े नहीं, पहले अपना अपना फोटो खींच रहे थे। मैं बोला आप देखो वृंदावन धाम आए हो, कम से कम ये किताब थोड़ा सा देखिए, एक ही सेंटेंस आप पढ़ोगे ना इतने ज्ञान मिलेगा कल्पना का बाहर। तब उनको समझाया, बोला देखिए आप जो कुछ करते हो आपका साथ एक कर्मफल अटैच है और कर्मफल को आप तोड़ नहीं सकते हैं। बोला कैसा? बोला देखिए कर्मफल कैसा अटैच है और हर व्यक्ति के साथ, बाप का कर्मफल बाप को मिलेगा, बेटा का कर्मफल बेटा को मिलेगा, ये जानना चाहिए। खुद का कर्मफल, आप पिछले कर्म में जो कुछ करके आए हो इसी प्रकार का शरीर ज्ञान बुद्धि सब कुछ है, और ये कर्मफल को तोड़ने के लिए भगवान का शरण में आना पड़ेगा। वहां पे एक सेंटेंस लिखा है, आप अपने कर्म को परिवर्तन कर सकते हैं, कर्म को बदला सकते हैं, कर्म को बदला सकते हैं। इसलिए कहते हैं कृष्ण चेतनशील बनो, कर्मान्यपेक्ष्य मत्स्य देवस्य सेवा, कर्म करो किस प्रकार की, कृष्ण चेतनशील होके, तब कृष्ण ही आपका कर्म फल को चेंज कर सकते हैं, आपके कर्म को कर्मफल को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए कम से कम आप कर्म को बदलाओ पहले, जिस प्रकार कर्म करोगे इसका निश्चिंत। इसको एग्जाम्पल दिया, मिर्ची का पेड़ लगाएंगे तो क्या मिलेगा, आम का पेड़ लगाएंगे तो कटहल का पेड़ से और कुछ नहीं मिलेगा, उसी प्रकार आप जैसा कर्म करोगे इसी का रिजल्ट। और दूसरा उनको एग्जाम्पल देकर समझाया, पिता माता एक ही होते हैं, पिता माता एक ही होने के नाते पांच बच्चे उनका बाई चांस पांच बच्चे होते हैं, पांच बच्चे का नेचर कैसा होता है, अलग अलग, और पांच बच्चे का शरीर का गठन कैसा होता है, अलग अलग, क्यों, कर्म, पिछले कर्म का अनुसार शरीर बनता है, किस प्रकार कर्म जैसा किया उसी प्रकार शरीर बनता है। कोई अंधा आया, कोई ज्ञानी आया, कोई बुद्धिमान है, कोई लंगड़ा है, अपना कर्म का अनुसार ऐसा ही बाहर आता है, ये जानना चाहिए। तो फिर उनको समझाने के बाद ऐसे किताब मेरा पास होता था, जन्म मृत्यु से परे वो किताब लिए, दस लोग दस किताब पकड़े, कभी कुछ पकड़ एक किताब नहीं पकड़ते थे, वो लोग दस को दस किताब पकड़ के लेकर गए। किताब का वैल्यू क्या है, और प्रभुपाद का मिशन में प्रभुपाद का जो चीज दिया हुआ चीज उसको पढ़ के थोड़ा बताने के बाद उनका अंदर श्रद्धा भी बढ़ जाता है और किताब लेते हैं, ये जान। इसलिए यहाँ पे जो चीज कहा गया है, हमें संसार का साथ ऐसा जड़ित हो जाता है संपूर्ण भगवान को, जनक जननी स्नेहते भूलिया संसार लागिला भला, कमे दिनों दिनों बालक हया खेलिनो बालक सह, आर किछु दिने ज्ञान उपजिल पाठ पढ़ी अहर हा। और धीरे धीरे बढ़ते हुए छोटे बच्चे का साथ है, खेलते रहेगा, खेलने के बाद फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद स्कूल कॉलेज जाएगा, पढ़ाई करेगा, पढ़ाई का साथ साथ इसका गर्व बढ़ जाएगा, जब विद्या थोड़ी से भौतिक विद्या अर्जन करेगा उसका गर्व बढ़ जाएगा, मैं इतने पढ़े लिखे हूं, इतने पढ़े लिखे होने का नाते फिर भी आएगा भगवान का दरबार में फिर भी सिर नहीं झुकाएगा, इतने अहंकार बढ़ जाता है, अहंकार कभी भी सिर झुकाना नहीं देता है, इतना अहंकार बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग इस प्रकार आते हैं, भगवान का आते हैं भगवान को प्रणाम नहीं करते, एक बार शास्त्र कहता है एक बार प्रणाम करने मात्र से, भगवान को श्रद्धा प्रेम और भाव से प्रणाम करने मात्र से पुनर्जन्म नहीं होता है, हजार दस हजार अश्वमेध यज्ञ करने का फिर भी वो व्यक्ति का पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन एक बार भगवान को श्रद्धा प्रेम और भक्ति के साथ प्रणाम करने का नाते उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। और व्यक्ति के अंदर कितने अहंकार की जो कि भगवान को प्रणाम नहीं करता है, भगवान को प्रणाम नहीं करेगा लेकिन नेता लोग को देखेगा तो पूरा साष्टांग प्रणाम कर लेगा। तब ये विद्या उसको अहंकार बढ़ा देता है, ये भौतिक विद्या। विद्यार गौरवे भ्रमे देशे देशे धन उपार्जन करी सोजन पालन करी एक मने भूली न तुम्हारे हरि। और ये विद्या अर्जन करके क्या करेगा, धन उपार्जन करेगा, और धन जब अर्जन करेगा धन उपार्जन करने से और अहंकार बढ़ा देता है, धन और अहंकार बढ़ा देता है, वार्धे के और अहंकार बढ़ाने के नाते संपूर्ण भगवान को भूल जाता है, और भगवान को भूलने के नाते सब कुछ बोलेगा मैं ही कर रहा हूं, वो सोचेगा मैं ही कर रहा हूं, अब मैं नहीं करूंगा तो मेरा मेरे को कौन खिलाएगा, मेरा परिवार को कौन खिलाएगा, वो ऐसे ही सोचते सोचे पूरा, वो जानता नहीं भगवान है और भगवान सबको सबका पालक है। बार्धक्य एखन भकती विनोद कांदिया कातर अति ना भजिया तोरे दिन वृथा गेल एखन किए हव गति। तब जब वार्धक्य हो जाता है, इसलिए कहते हैं एकादश इंद्रिय में सारा इंद्रिय सारा शरीर बूढ़ा हो जाए, लेकिन एक इंद्रिय कभी बूढ़ा नहीं होता है। कौन बताएगा? हाँ जी, कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, हमेशा के लिए जवान रहता है, हमेशा के लिए जवान। इसीलिए वार्धक्य है कहना, और बूढ़ा पकड़ में सब कुछ करने का इच्छा होता है लेकिन कर नहीं पाता, लेकिन मन में यो चाहता है, मन हमेशा के लिए यंग रहता है। ना भजिया तोरे दिन वृथा गेला एखन की हव गति, तब भगवान का भजन नहीं करने से क्या गति होगा। इसलिए कहते हैं अंधेरे में छाया भी, अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापा में काया भी साथ नहीं देती, सारा जीवन दांव पर लगा दिया जिसके लिए अंत समय में माया भी साथ नहीं देती है, जिसके लिए हमें प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं संसार और शरीर के लिए, सारा संसार संसार और शरीर के लिए सब लोग व्यस्त है, ना संसार रहेगा ना शरीर रहेगा, यही है माया, और माया का पीछे भाग रहा है। शरीर रहेगा ना संसार रहेगा, ये जानना है। और किस तरह, समय हो चुका है अभी इधर, और बहुत बोलने का था लेकिन समय नहीं है इतना, फिर भी यहां पे किस प्रकार महाभारत में विदुर नीति में पंचम अध्याय में कहते हैं हर व्यक्ति का उम्र जो कलयुग में होता है 100 साल 100 साल क्यों नहीं टेकता है, और क्या कारण है? एक ही कारण है, अत्यंत अभिमानी, ये अभिमान का कारण से आयु हर जाता है। दूसरा होता है अधिक बोलने वाला, अधिक बोलता है व्यक्ति, और क्या बोलना चाहिए, भगवान का बारे में चर्चा करते हो और एक एक घंटा नहीं 10-10 घंटा प्रवचन देते हो, तब इसमें आयु घटेगा नहीं, आयु बढ़ेगा। लेकिन विषय वार्तालाप में करते हो, विषय वार्तालाप में कुछ भी चर्चा आप करते हो, आप आयु घटेगा, फिर भी क्या होगा, आपका जो एनर्जी है ना वो भी घट जाता है। आप देखिए कभी कभी आप लोग भगवान का नाम जपते हैं, कभी थकावट लगता है? लगता है। देखिए निर्जला एकादशी होता है, निर्जला एकादशी में भक्त लोग कम से कम 64 माला जप करते हैं, निर्जला है फिर भी 64 माला जप कर रहे, कभी टायर्ड भी नहीं लगता है, फीलिंग नहीं होता है। अभी किसी व्यक्ति को बोल दो कर्मी जगत में, भौतिक जगत में, बोला 2 घंटा अभी खाना नहीं मिलेगा, होता भड़क जाएगा, परेशानी हो जाएगा, 2 घंटा तक खाना नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान का बारे में जब होता है अधिक बोलता है उसका आयु घटता नहीं, अधिक बढ़ता है, लेकिन जो विषय वार्तालाप करते हैं तब उनका आयु घट जाता है। और तीसरा है त्याग का अभाव, विषय का, विषय भोगी जो भी कर्मी जगत का भौतिक जगत का लोग को त्याग करना नहीं चाहते हैं, त्याग नहीं करे, त्याग का अभाव रहता है, त्याग नहीं करेगा तब क्या होगा, इसका आयु भी घट जाएगा। और चौथा है क्रोध, पांचे हुआ अपना पेट पालने की चिंता, सुबह से शाम तक अपना पेट को पालना कैसा है ये चिंता में रहता है तब उसका आयु घट जाता है। और छठा है मित्र द्रोह, साथी लोग का साथ द्रोह करता है, जिसका साथ मित्र बना है इसका साथ द्रोह करता है, वो द्रोह करने से क्या होगा, आयु हर जाता है, आयु घट जाता है। लेकिन 5 चीज आयु को बढ़ाते हैं, ये भी वही विदुर नीति में कहा गया है, क्या क्या बढ़ाते हैं, संपूर्ण प्राणियों के प्रति कोमलता भाव, सबका साथ क्या होना चाहिए, मित्र भाव, प्रीति रखना चाहिए संपूर्ण प्राणी जगत का, ऐसा नहीं सिर्फ आदमी आदमी का साथ रखना, सभी प्राणी को साथ। दूसरा है गुणों में दोष न देखना, कभी भी किसी का कोई व्यक्ति प्रवचन दे रहा है बाय चांस थोड़ा बहुत बाय मिस्टेक हो गया, ये दोष नहीं देखना चाहिए, उसका अच्छा गुण बाय चांस हो सकता है, 99% 99 गुण उसका खराब हो सकता है, लेकिन एक गुण अच्छा है, प्रभु का भक्ति कर रहा है, ये महान माना जाएगा। और इस्कन में, इसलिए प्रभुपाद भी ये कहते थे इस्कन में जो भी आते हैं उनका अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है, कुछ ना कुछ क्वालिटी है, हो सकता है 1000 क्वालिटी उसका अंदर खराब है, लेकिन कुछ ना कुछ एक ही अच्छा गुण है जो कि भगवान का शरण पे आता है, इसलिए कहते हैं गुणों में दोष नहीं देखना, और तीसरा है क्षमा, हमेशा के लिए क्षमा करना चाहिए सबको। चौथा है धैर्य, पांच है मित्र का अपमान न करना, कभी मित्र को अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का भी तो नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा जो पांच नंबर में विदुर नीति में जो बता गया ये मैं बता रहा हूं, लेकिन ये बता गया मित्र का अपमान ना करना, ये है, ये नहीं करेगा तो वह आयु बढ़ेगा, नहीं तो आयु क्षय होते जाएगा और सबका क्षय हो जा रहा है। बहुत सारा चीज है सिमरत्वा, ये जो महाभारत में बहुत सारा चीज भी दिया गया है किस प्रकार आयु घटता है और आयु किस में बढ़ेगा, खाद्य का ऊपर डिपेंड करता है, खाद्य का ऊपर डिपेंड करता है, भगवत गीता में खाद्य का ऊपर दिया गया 70:8 में है, आयु सतो बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आरह सात्विक प्रिय, जो भोजन सात्विक व्यक्ति को प्रिय होता है वह आयु को बढ़ाने वाला है, इसीलिए सात्विक चीज खाना चाहिए, सत्वगुणी में रहना चाहिए, सात्विक खाद्य खाना चाहिए, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल स्वास्थ्य सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है, ऐसा भोजन रसमय स्निग्ध और स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। खाद्य का ऊपर भी डिपेंड करता है आयु को बढ़ाता है, खाद्य सत्वगुणी होना चाहिए, लेकिन सत्वगुणी से ऊपर फिर है जब हमें भगवान को भोग लगा के भोजन करते हैं तब शुद्ध सात्विक स्तर आ जाता है, इसलिए भगवान को भोग लगा के भोजन करना चाहिए, इसलिए कम से कम यही चीज करने से भगवान का भक्त बन के भक्ति करने से हमारा आयु हरण नहीं होता है। हरे कृष्णा। और भी बहुत सारा चीज है चर्चा करने के लिए, अभी तो इसमें चर्चा करने के लिए समय टाइम पर। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की, संवेद गौर भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। कोई बोलने में सब कुछ त्रुटि रहा तो आप लोग को क्षमा कर देने का, वैष्णव रीति रिवाच अनुसार, वंछा कल्पतरु भेश्य कृपा सिंधुभ्य वच, पतितान पावने भो वैष्णव भो नमो नमः। हरे कृष्णा।